वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे।
तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
ओम शांति। तो प्यारे बाबा ने हम सब के अरमान पूरे किए हैं ना, किए हैं, कर रहे, किस किस के किए हैं? तब हमें क्या करना है? वो सौभाग्यशाली हैं जिनके अरमान भगवान पूरे करते हैं, और वो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के अरमान पूरे करते हैं। वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान मिल गए हैं, लेकिन पद्मा पद्म सौभाग्यशाली वो हैं जिन्होंने भगवान को अपना बना लिया है। वो सौभाग्यशाली जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन वो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली जो भगवान की शिक्षाओं को आत्मसात कर लेते हैं, उनकी शिक्षाओं के स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि संसार में कहते तो हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जिन्होंने सत्य बोलकर दिखाया, सत्य का आचरण करके दिखाया, संसार उन्हें याद करता है। चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र। आचरण में लाना, जीवन में लाना, ये महत्वपूर्ण है। हम बाबा की शिक्षाओं को कितना अपने आचरण में ला रहे हैं, हम उनके अरमानों को कितना पूर्ण करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि प्रिय वही लगता है जो आज्ञाकारी होता है। एक गुरु के बहुत सारे शिष्य थे, पुराने जमाने की बात है, लेकिन एक शिष्य से गुरु जी को बहुत प्रेम था। हर कार्य में उसे आगे रखते थे, हमेशा प्रवचनों में उनका नाम लेते थे। तो बाकी के शिष्यों को क्या होता था? ईर्ष्या होती थी कि हम भी तो हैं, गुरुजी हमारा नाम क्यों नहीं लेते, इसे ही आगे क्यों रखते हैं। एक ने पूछ ही लिया कि गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरुजी ने कहा मैं बाद में बताऊंगा। एक दिन वो भ्रमण कर रहे थे, गुरुजी नदी के उस पार थे, बाकी के शिष्य इस पार थे। अचानक गुरुजी ने आवाज दी कि तुरंत तत्काल यहां आओ। मेरे पास आओ, तुरंत आओ, तत्काल आओ। अब जो बहुत प्रिय शिष्य था उसने नदी में ही दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के उस पार पहुंच गया। उसकी श्रद्धा, उसकी भावना, जैसे जैसे वो दौड़ा वैसे वैसे कमल के पुष्प उसके नीचे आते चले गए और बाकी लोग सोचते रहे कि कैसे उस पार पहुंचे। गुरु जी ने कहा यही उत्तर है, जो आज्ञा मिली गुरु की उसे तत्काल जो अमल में लाता है वो गुरु के हृदय पे चढ़ जाता है। तो हमारे परम शिक्षक ने, हमारे परम सद्गुरु ने हम सबको भी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पिछले सीजन में कुछ आज्ञाएं दी, कुछ होमवर्क दिया। और एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने टीचर के हर शिक्षा और हर होमवर्क को करके फिर उनके सामने पहुंचे। तो बाबा फिर से अगले सीजन में जब हमारे सामने आएंगे तो हम कैसे जाएंगे बाबा के सामने? होमवर्क करके जाएंगे ना, या ऐसे ही चल पड़ेंगे कि हाँ जी हम फिर आ गए? ऐसे नहीं ना, होमवर्क करके जाएंगे। तो क्या होमवर्क दिया बाबा ने पिछले सीजन में हमें? क्या क्या होमवर्क दिया है बाबा ने हमें? आज हम 10 धामों की यात्रा के साथ बाबा की 10 मुरलियों को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। वैसे तो 4 धामों की यात्रा बाबा कहते हैं रोज करो, लेकिन चूंकि 10 मुरलियां बाबा ने चलाई तो हमने 10 धाम किए। धाम अर्थात वो स्थान जहां जाकर हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सांसारिक जैसे एक भान से उपराम हो जाता है, जहां हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, जो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और बाबा की अनन्य रत्नों के साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे धाम है। तो हम ब्राह्मणों के अलौकिक अव्यक्त धाम, तो चलें यात्रा पर। इस सुंदर यात्रा के साथ हम बाबा के पूरे होमवर्क को, जब हम यात्रा पूरी करेंगे तो हमें पूरे ही 10 होमवर्क अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और फिर रोज एक बार इन 10 धामों की यात्रा कर लीजिएगा। बाबा हमेशा कहते ही हैं कि रोज एक बार 4 धामों की यात्रा करो। हम रोज 10 धामों की यात्रा कर लिया करेंगे, ठीक है? तो चलें, सब तैयार हैं? चलें। पहला धाम हमारा वो स्थान जहां बाप दादा की पधरामणि होती है, शुरुआत वहां से करते हैं। हमारे परम शिक्षक जहां आकर हमें दिव्य शिक्षाओं से सजाते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। कौन सा स्थान? डायमंड हॉल। तो पहुंच जाएं डायमंड हॉल में। देखें, दिल से हम बाबा का आह्वान करें। सीजन की शुरुआत, हम सब के हृदय में बाबा के लिए अदाद स्नेह, बाबा के लिए बहुत प्रेम, मन में एक भाव कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। कितनी सुंदर हमारे हृदय में भावना होती है, उसी भावना के साथ, उसी प्यार के साथ पहुंच जाएं डायमंड हॉल में। दिल से बाबा का आह्वान और हमारे सम्मुख प्यारे बाप दादा। देखें अपने सामने अव्यक्त बाप दादा को, सीजन की शुरुआत। बाबा अपनी नजर से सभी को निहाल कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि पूरे डायमंड हॉल में फैल रही है और हर आत्मा बाबा के प्रेम में समाई हुई है। आज बाबा हमारे लिए एक चार्ट लेकर आए हैं। देखें, भोग के साथ कुछ पेपर्स रखे हुए हैं और बाबा दृष्टि देने के बाद इशारा करते हैं और एक एक बच्चे को एक एक चार्ट दे रहे हैं। चार्ट, सीजन की पहली मुरली। बाबा ने चार्ट दिया और दो मुख्य बातों को चेक करने के लिए कहा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बाबा ने कहा जैसे भविष्य में एक राज्य और एक धर्म होगा, वैसे ही चेक करो तुम्हारे अंदर एक राज्य है, मन में एक राज्य, कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर पर हैं, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां, स्वराज्य है या बीच बीच में माया या मन अपना राज्य कर लेते हैं। परसेंटेज दें अपने आप को, एक राज्य कितना है। सारे दिन में मेरी हर कर्मेंद्रिय मुझ राजा के ऑर्डर पर कितना चलती है, मन कितना ऑर्डर पे चलता है, बुद्धि कितना ऑर्डर पे चलती है, संस्कार कितना ऑर्डर पे चलते हैं, मेरी आंखें, मेरी जिह्वा, मेरे कान, मेरी अन्य कर्मेंद्रियां कितनी ऑर्डर में हैं, एक राज्य है या मन कभी कभी राज्य करने लगता है, आंखें कहीं और चली जाती हैं, जिह्वा कुछ अच्छी चीज देखी वो खाने के लिए ललायित होने लगता है, क्या एक राज्य है। चेक करें और परसेंटेज दें वर्तमान में एक राज्य कितना है। दूसरी बात उस चार्ट में देखें जो बाबा ने दी है, दो बातें हैं, एक राज्य और दूसरा एक धर्म होगा सतयुग में, भविष्य में। तो बाबा ने कहा वर्तमान में एक धर्म कितना है चेक करो। एक धर्म पवित्रता का धर्म, तो कभी अपवित्रता आ तो नहीं जाती, अपवित्रता का राज्य तो नहीं हो जाता, धर्म कहीं हलचल में तो नहीं आ जाता। चेक करें और उसकी निशानी सदा सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति रहती है, संतुष्टता की अनुभूति रहती है। यदि एक धर्म है तो राज्य में सुख शांति आनंद अतीन्द्रिय प्रेम रहेगा, और यदि ये नहीं है तो कहीं ना कहीं अपवित्रता धर्म बन जाता है। मापते हैं अपने आप को, डायमंड हॉल, बाबा की पहली मुरली, बाबा को देखते हुए इन दोनों बातों के आधार पर अपने आप को मार्क्स दें। वर्तमान स्थिति कैसी है, कितना एक राज्य है, मैं आत्मा राजा कितना राज्य करता हूं और माया का दखल कितना है। पवित्रता एक ही धर्म है मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृति में, या अपवित्रता आ जाती है। बाबा से बहुत दृढ़ संकल्प कर लें कि बाबा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं 100% स्वराज्य अधिकारी बनकर दिखाऊंगा, 100%। जहां एक राज्य होगा एक धर्म होगा। प्रतिज्ञा बाबा से। दूसरे धाम की ओर चले। ये हमारा दूसरा धाम, कौन सा धाम है ये? शक्ति स्तंभ, बाबा की दूसरी मुरली। बाबा ने कहा, बाप समान बनने में एक प्रसिद्ध शब्द विघ्न रूप बनता है और वो है मैं। मैंपन ये समान बनने नहीं दे रहा है। तो क्या करूं, इस मैं की पूंछ को ज्वालामुखी तपस्या से जला दो। इस मैंपन की पूंछ को ज्वालामुखी तपस्या से जलाओ तो हमारे दूसरे धाम में पहुंच जाएं। देखें कौन कौन सा मैंपन अभी तक मेरे पास है, कौन कौन सा मैंपन। हर एक का मैंपन अपना अपना है। मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत योग्य हूं, मेरे अंदर बहुत विशेषताएं हैं। देखो कितनी पूंछ आपको लगी हुई है, देख लो। मैं शक्ति स्तंभ में प्रवेश कर रहा हूं, कर रही हूं, और कितनी पूंछ लेकर प्रवेश कर रहा हूं वो देख ले। बहुत बड़ा हूं, बहुत योग्य हूं, बहुत समझदार हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत विद्वान हूं, मुझे सब कुछ आता है, मेरे से बड़ा और कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा समझदार और कोई ही नहीं। पूंछों के साथ मैं शक्ति स्तंभ में प्रवेश करता हूं। शक्ति स्तंभ में देखें, पहुंच जाए बुद्धि से, देखें वहां धुन चल रही है, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। ये धुन अनहद नाद की तरह शक्ति स्तंभ में गूंज रही है और वहां हमारी प्यारी दादी जानकी जी ज्वालामुखी तपस्या में बैठी हुई है, ज्वाला देवी के रूप में बैठी हुई है। जैसे पूरा ही शक्ति स्तंभ ज्वालामुखी तप से तप रहा है, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस। मैं दादी के सामने बैठ जाता हूं। दादी शक्तिशाली स्थिति से ज्वालामुखी तप से मुझे भी दृष्टि देते हुए मेरे सारे मैंपन के पूंछ को जला रही है। देखिए मेरे सारे मैंपन जलते जा रहे हैं, पूंछ जलती जा रही है, पूंछ दग्ध होती जा रही है, देह रूपी धूम भी जैसे जल गई है और मैं केवल आत्मा रह गई हूं, केवल आत्मा, मैं आत्मा और कोई मैंपन नहीं। जैसे मैं और पापा, मैं कौन मेरा कौन, इस स्थिति में बिल्कुल मैं स्थित हो गई हूं। ना देह का भान है, ना देह का अभिमान है, ना कोई मैंपन। स्थित हो जाए थोड़ी देर इस स्थिति में। ज्वाला देवी के रूप में दादी जानकी जी ज्वालामुखी तप से मेरे मैंपन के पूंछ को दग्ध करते हुए देह को भी दग्ध करके बिल्कुल विदेही जनक ने जैसे मुझे विदेही कर दिया है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस इस स्वरूप में स्थित। इसी आत्म स्वरूप में स्थित हुए हुए दादी मुझे एक वरदान दे रही हैं। देखिए बहुत सुंदर वरदान है, पढ़ें उस वरदान को। दादी से दृष्टि लेकर मैंने वरदान लिया। उस वरदान में लिखा हुआ है, ज्वालामुखी तपस्वी भव, ज्वालामुखी तपस्वी भव। दादी से वरदान लेकर मैं चलता हूं तीसरे धाम की ओर। चलें तीसरे धाम में। ये कौन सा धाम है? अव्यक्त लोक, हम सबके प्यारी छोटा नंदी दादी गुलजार जी प्यार से हमें दृष्टि दे रही हैं, प्यार से बुला रही हैं। दादी से दृष्टि लेते हुए अव्यक्त लोक में दादी से एक गिफ्ट लेंगे। दादी हमें एक सौगात दे रही हैं। देखें, एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेट है ब्रह्मा बाबा का, बहुत सुंदर सा चित्र पोर्ट्रेट अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का, वो दादी मुझे सौगात में दे रही हैं अव्यक्त लोक में। देखें, दादी दृष्टि देते हुए प्यार से मुझे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का बहुत ही खूबसूरत सा पोर्ट्रेट दे रही हैं। तीसरी मुरली, बाबा ने कहा, बाबा निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहे हैं कि अभी अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाप सब में दिखाई दे। ये विशेष होमवर्क दे रहे हैं कि अब ब्रह्मा बाप दिखाई दे। और विशेष बाबा ने कहा, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। तो देखिए, उस पोर्ट्रेट पे नीचे लिखा हुआ है, अब साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। ले ली सभी ने दादी से सौगात? सभी को मिल गई? किसी को ना मिला हो तो हाथ उठाएं। अच्छा, सभी ने सौगात ले ली, वेरी गुड। सौगात छोड़ना नहीं, दादी हमें सौगात दे रही, प्यार से हमने सौगात ली। तो साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, ये बाबा की आश, बाबा की आश। होमवर्क विशेष बाबा ने दिया। कितने वर्ष हो गए ना, बाबा ऊपर वतन में इंतजार कर रहे हैं। 1969 से बाबा इंतजार कर रहे हैं वतन में, हम बाबा को और कितना इंतजार कराएंगे, और कितना। इसीलिए बाबा ने कही, अब बाबा की आश है साक्षात ब्रह्मा बाप बन जाओ। इसके लिए क्या करेंगे? एक ही कार्य करना है। सारे दिन में एक स्लोगन याद रखें, बाबा होते तो क्या करते, बाबा होते तो कैसे बैठते, मैं भी बाबा की तरह बैठूं, बाबा होते तो कैसे चलते, मैं भी बाबा की तरह चलूं, बाबा होते तो कैसे बोलते, मैं भी वाणी में बाबा को फॉलो करूं, बाबा होते तो कैसे देखते, क्या देखते, क्या देह देखते, किसी का अवगुण देखते, नहीं, आत्मा देखते, आत्मा में भी आत्मा के गुण को देखते, बाबा होते तो कैसे भोजन करते, बाबा होते तो कैसे विश्राम करते। एक ही, मुझे यदि साक्षात ब्रह्मा बाप बनना है, एक स्लोगन पक्का कर लें आज से, बाबा होते तो। बार बार अपने आप से पूछें, कॉपी करते चले, मुझे बाप समान बनना है, बाबा को साकार कर लेना है स्वयं में। एक ब्रह्मा ऊपर और एक ब्रह्मा नीचे, और वो मैं हूं, ये पक्का कर ले। मुझे अपने पिता की आश को पूर्ण करना है, एक बाबा ऊपर, ब्रह्मा ऊपर, और उनका बिल्कुल प्रतिरूप, रेप्लिका, एक ब्रह्मा इस साकार सृष्टि में। हो सकता है? हो सकता है? कौन कौन कहते हैं ऐसा हो सकता है? एक ब्रह्मा नीचे और वो मैं हूं, पीछे वाले राइट, मैं हूं, संकल्प। तो तीसरा धाम फिर से एक बार देख लें, दादी ने हमें एक बहुत प्यारा सा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का पोर्ट्रेट दिया, चित्र दिया, नीचे लिखा हुआ है साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। आत्मसात कर लें और चलें अगले धाम की ओर। हमारा अगला धाम, अगला धाम प्रकाश स्तंभ। देखें बड़ी दादी जी बहुत प्यार से, दादी को देखा ना मंच पर कितने प्यार से गुलदस्ता हिलाते थे, तो दादी प्यार से वहां खड़े होके गुलदस्ता हिला के हमें बुला रही हैं अपने पास। हम प्यार से दादी के पास पहुंचते हैं, दादी ने वो गुलदस्ता मुझे दिया और उस गुलदस्ते पे लिखा हुआ है स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप भव। देख लें उस गुलदस्ते को, बहुत प्यारा सा गुलदस्ता है जो दादी के हाथ में है। दादी ने वो गुलदस्ता मुझे देते हुए, दृष्टि देते हुए प्यार से कहा स्मृति स्वरूप बनो। चौथी मुरली बाबा की, बाबा ने कहा सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। सोचते नहीं रहो मैं ये हूं ये हूं ये हूं, और ना ही ये सोचते रहो कि मुझे ये करना है करना है करना है। अब समय है स्मृति स्वरूप भव, स्मृति स्वरूप हो जाओ। मेरा अनादि स्मृति, अनादि स्वरूप कैसा, मेरा आदि स्वरूप कैसा, मेरा अंत स्वरूप कैसा, बाबा ने इन तीनों को पक्का कराया। अनादि कितने शुद्ध पावन, आदि कितना दिव्य रूप, और अंत में भगवान के साथ विश्व का कल्याण करते हुए इनके स्मृति स्वरूप बनो। और बाबा ने कभी कहा है ब्राह्मणों के लिए स्मृति ही जीवन है और विस्मृति ही मृत्यु है। ब्राह्मणों के लिए स्मृति ही जीवन है और विस्मृति ही मृत्यु है। यदि ये स्मृति है कि तुम कौन हो तो जैसे तुम जीवित हो, और यदि तुम्हें स्मृति ही नहीं है कि तुम कितने श्रेष्ठ हो, महान हो, कितना दिव्य कर्तव्य करने वाले हो, तो जैसे तुम मृत हो। तो मुझे स्मृति स्वरूप होना है क्योंकि यही हमारा अंतिम पेपर है। पास विद ऑनर होना है ना, किस किस को पास विद ऑनर होना है, पास विद ऑनर राइट। वाह बाबा देखे कितने खुश हो रहे होंगे कि पूरे मेडिटेशन हॉल में सारी पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं बैठे हैं। तो पास विद ऑनर होने के लिए क्या करना है, अंतिम पेपर, अंतिम पेपर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जब तक स्मृति स्वरूप नहीं होंगे तब तक नष्टो मोहा नहीं हो सकते, पास विद ऑनर नहीं हो सकते। इसलिए अभी से स्मृति स्वरूप, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहें मैं कौन, जिसको बाबा ने पिछले संडे की मुरली में पांचों स्वरूपों का सुंदर अभ्यास कराया। स्मृति स्वरूप हो जाएं, अब विस्मृत रहने का वक्त नहीं है। तो दादी ने हमें क्या दिया, दादी ने क्या दिया, गुलदस्ता दिया। सब साथ लेके चलते चलो, है ना, मधुबन से खाली हाथ नहीं जाना है, सारी झोली भर के जाना है। हमारी दादियां जो प्रेम से सौगात दे रही हैं उन सौगातों को लेके जाना है। तो बड़ी दादी ने दिया हमें प्यारा सा गुलदस्ता, क्या लिखा था रिपीट करें, स्मृति स्वरूप भव। पांचवा हमारा धाम, ये कौन सा धाम है, कौन सा धाम है, ज्ञान रत्न स्तंभ, है ना, हमारी प्यारी रत्न मोहिनी दादी जी का यादगार। पहुंच जाए ज्ञान रत्न स्तंभ में, दादी प्यार से हम सबको वेव करके बुला रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं। बाबा की पांचवी मुरली, बाबा ने कहा बाबा इस वर्ष दो शब्दों की विदाई चाहते हैं, और वो दो शब्द है कारण और समस्या। नहीं, निवारण को विदाई नहीं देना है कारण और समस्या को विदाई देनी है, और निवारण और समाधान को समाना है। तो दो शब्दों को बाबा ने कहा, बाबा ने होमवर्क दिया, दो शब्दों को बाबा इस वर्ष विदाई देना चाहते हैं। कौन से दो शब्द, कारण और समस्या। और दो बाबा ने कहा इसके लिए दो बातें याद रखो, दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। तो पहुंच जाए दादी के पास, दादी के पास हमेशा टीचर बहनें फाइल लेके जाया करते थे, है ना। तो देखो, दादी के पास हम दो फाइल लेकर के गए हैं। एक फाइल के ऊपर लिखा हुआ है कारण और दूसरी फाइल के ऊपर लिखा हुआ है समस्या। ये दोनों फाइल हम दादी को दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं कि दादी ये कारण और ये समस्या दोनों फाइल, जो हमारी फाइल बहुत मोटी सी बन गई है, दोनों आपको हम अर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। दे दी दादी को फाइल, दे दी या रखनी अपने पास? नहीं ना। कारण और समस्या की फाइल हमने दादी को दे दी और दादी ने हमें दो टोलियां खिलाई, दो टोली, आपको जो मनपसंद टोली हो। एक दिलखुश मिठाई, ठीक है, जिसके ऊपर डी लिखा हुआ है, और एक गुलाब जामुन जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है, ठीक है, डीपी। ये दो टोली दादी ने हमारे मुख में बहुत प्यार से खिलाया, दिलखुश डी और एक गुलाब जामुन जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है, और दादी ने कहा इस दोनों टोली को अपनी डीपी में लगा लेना। डीपी चेंज करते रहते हैं ना, तो अपनी डीपी में दादी ने कहा इन दोनों टोलियों को लगा लेना, डी और पी, दिलखुश मिठाई और साथ ही वो सुंदर सा गुलाब जामुन। तो डीपी क्या है? दृढ़ता की शक्ति, और पी परिवर्तन शक्ति। क्लियर है? दादी के पास हम, रत्नमोहिनी दादी के पास, ज्ञान रत्न स्तंभ में, पांचवा धाम। दादी को हमने दो फाइल दिए, कारण और समस्या का, कि दादी अब ये कभी भी हम कारण शब्द नहीं बोलेंगे, जो बाबा ने कहा चाहे कैसी भी सरकमस्टांस हो, संगठन हो, साथी हो, संस्कार हो, कारण शब्द नहीं, समस्या शब्द नहीं, इसे ब्राह्मणों की डिक्शनरी से निकाल दो, बाबा ने कहा। तो हमने ये फाइल ही अर्पित कर दी, अब हम कोई कारण नहीं देंगे, कोई समस्या नहीं बताएंगे, और दो टोली मुख में अपनी डीपी में लगा ली हमने, दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति। तो दृढ़ता पूर्वक मुझे परिवर्तन करते चलना है, दृढ़ता पूर्वक अपना परिवर्तन, अपने संस्कारों का परिवर्तन, परिस्थितियों का भी परिवर्तन, अपनी स्व स्थिति से कारण नहीं देंगे। ओके? अगला धाम, एक बार मन से एक मिनट में राउंड लगा लें, कुछ ना बोलें, बस मन से पहला धाम देख लें, डायमंड हॉल, चार्ट चेकिंग, एक धर्म एक राज्य, दूसरा धाम शक्ति स्तंभ, मैपन की पूंछ को ज्वालामुखी तपस्या से हमने जला दिया, तीसरा धाम अव्यक्त लोक, दादी ने ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर पोर्ट्रेट दिया, नीचे लिखा है साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, चौथे धाम में आ गए, आंख बंद कर लें, एक बार अच्छी तरह देख लें, चौथा धाम, बड़ी दादी प्यार से गुलदस्ता हिलाते हुए हमें अपने पास बुला रही हैं, प्यार से उन्हें दृष्टि देते हुए उन्होंने हमें गले लगाकर वो गुलदस्ता दिया, गुलदस्ते पे लिखा हुआ है स्मृति स्वरूप भव। पांचवा स्तंभ, दादी रत्न मोहिनी जी के स्तंभ पे हम आए, हमारे हाथ में दो फाइल है जो हमें बोझिल कर रही है, भारी कर रही है, बड़ा भारी सा फाइल है, ये दोनों मोटी मोटी फाइल हो गई है, एक के ऊपर लिखा है कारण, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है समस्या, जो बहुत बोझिल कर रही है, हमसे संभाली भी नहीं जा रही है, हमने दादी को वो दोनों फाइल दे दी, और दादी ने वो दोनों फाइल हमसे लेकर के हमारे मुख में दो टोली खिलाई, एक के ऊपर लिखा है डी, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ पी, और दादी ने कहा ये खिलाते हुए इन दोनों टोलियों को अपनी डीपी में लगा लेना, दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। ओके? अपनी आंख खोलें, चलें अगले धाम की ओर, छठवां धाम, छठवां धाम हिस्ट्री हॉल, है ना, आप सब मधुबन में बैठे हुए हैं, बार बार हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, हिस्ट्री हॉल आ जाए, हिस्ट्री हॉल में देखें, यहां बाबा ने होमवर्क दिया, छठवीं मुरली में बाबा होमवर्क देते हैं, कोई भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, इसमें टाइम ना जाए, इसकी कोई विधि बनाओ, विधि बनाओ, क्योंकि मन को नियंत्रित करना, मन जीत जगत जीत बनना है तुम। भविष्य में मनसा सेवा करनी है, इसलिए मन पर अटेंशन देना जरूरी है। इसलिए होमवर्क क्या है? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय ना जाए उसकी विधि बनाओ। क्या विधि देंगे बाबा को? खुद बना करके बाबा को बताएं, बाबा ये विधि हम अपनाएंगे कि हमारा मन में कोई व्यर्थ ना चले और समय भी व्यर्थ ना जाए। क्या विधि होगी? राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, यदि व्यर्थ से हमें मुक्त होना है, टाइम टेबल। अपने मन और तन का टाइम टेबल जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए पक्का कर लें बाबा के सामने बैठकर, रोज अमृत वेले हम अपने तन का और मन का टाइम टेबल अवश्य बनाएंगे। ये विधि अपनाएं। बाबा जिस विधि की बात कर रहे हैं कि बच्चे विधि बनाओ कि कैसे हम व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय से मुक्त हों। क्यों? क्योंकि आगे चल करके तुम्हें मनसा सेवा करनी है। मन से सभी को, मनसा सेवा से सभी का कल्याण करना है, इसलिए मन पर अटेंशन दो। मन जीत बनोगे तभी जगत जीत बनोगे, बाबा कह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? तन मन का टाइम टेबल, और एक फॉर्मूला हम लेकर के चलेंगे तन मन के टाइम टेबल के साथ, SOS फॉर्मूला। SOS क्या है? स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्विच। बीच बीच में स्टॉप, रुकें, ऑब्जर्व करें कि कैसे संकल्प चल रहे हैं, मेरा समय कहां जा रहा है, और यदि व्यर्थ में जा रहा है उसे क्या करें? स्विच करें, व्यर्थ से समर्थ में स्विच करें। जब लगातार हम ये चेक और चेंज करेंगे, तभी हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त होंगे। तो क्या देखा छठवें धाम में? क्या किया? विधि, संकल्प, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय ना जाए उसकी विधि हमने बाबा को सुनाई कि बाबा हम टाइम टेबल बनाएंगे, ये हम विधि अपनाएंगे और आपको व्यर्थ से मुक्त होकर दिखाएंगे। संकल्प कर लिया? अच्छी तरह देख लें छठवें धाम को। वैसे हिस्ट्री हॉल के लिए बाबा कहते हैं, हिस्ट्री हॉल में आओ तो व्यर्थ समर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हिस्ट्री हॉल में हमें अपने सभी व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करने का संकल्प लेना है, विधि अपनानी है टाइम टेबल के। SOS, स्टॉप होंगे, ऑब्जर्व करेंगे और स्विच करेंगे व्यर्थ को समर्थ में। सातवां धाम पहुंच जाए, सातवें धाम में शांति स्तंभ, बाबा के सामने। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, जैसे भक्ति में तुमने मेरे ऊपर तीन बेल के पत्र चढ़ाए, वैसे बाबा तुम्हें तीन स्वर्ण पत्र दे रहे हैं, सोने के पत्र। एक ही है जिनमें तीन पत्ते लगे हुए हैं, देखें, सोने के तीन पत्ते, और उन पे लिखा हुआ है होलिएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा की अगली मुरली। बाबा ने कहा, सर्व खजानों से संपन्न जो आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या है? वो क्या होंगी? होलिएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो पूरे कल्प में मैं होलिएस्ट हूं, हाईएस्ट हूं, रिचेस्ट हूं, ये सुंदर चक्र लगाते रहें। जितना ज्यादा इस सुंदर स्मृति में रहेंगे, बाबा ने ये मुझे सुंदर सौगात दे दी तीन पत्रों की, स्वर्ण पत्र। और भगवान ने ये कहा, पूरे कल्प में तुम होलिएस्ट हो। पांचों रूपों को देख लें, हमारा अनादि, आदि, मध्य, अंत, फरिश्ता, सारे रूप होलिएस्ट है, हाईएस्ट है हम, ऊंचे ते ऊंचे बाबा के पास बैठने वाले, संगम में भी ऊंचे ते ऊंचे बाबा की गोद में बैठने वाले। और हमसे richest है कोई? है कोई? richest in the world हम हैं। तो ये तीनों सुंदर बातें आत्मसात कर लें। बाबा ने हमें क्या दिया? तीन सुंदर पत्ते, स्वर्ण पत्र, जिनके ऊपर लिखा हुआ है सौगात में बाबा ने दी। अच्छी तरह देख लें इसे। शांति स्तंभ में बाबा ने हमें ये सुंदर तीन सोने के पत्र दिए, जिन पे लिखा है होलिएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। ले लें उसे, मिस नहीं करना, सोने का है, है ना, संभाल के रखना है इसे। और बाबा ने ये सौगात देना, भगवान हमें जो सौगात दे आत्मसात कर लें। आठवां धाम, बाबा की कुटिया। देखें बाबा बैठे हुए हैं अपनी कुटिया में और मैं बाबा के सामने जाकर बैठ जाता हूं। आठवीं मुरली, बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए तीन बिंदियों का तिलक, समान बनने के लिए तीन बिंदियों का तिलक। देखें बाबा मुझे अपनी उंगली से तीन बिंदी लगा रहे हैं मेरे ललाट पर। एक आत्मा बिंदी, दो परमात्मा बिंदी और तीन ड्रामा बिंदी। आपके बगल में भी जो बैठे हुए हैं उनको भी आप तीन बिंदी लगा दें, याद दिलाते हुए अपने अगल बगल वालों को तीन बिंदी याद दिलाते हुए। हाँ, लगाओ लगाओ, अगल बगल वाले तीन बिंदी लगाएं। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, है ना। अपने साथियों को भी ये तीन बिंदी का तिलक बाबा ने हमें दिया, हम अपने साथियों को दें। तो आत्मा बिंदी लगाना बहुत आसान है, परमात्मा बिंदी को याद करना वो भी हम करते हैं, तीसरा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? ड्रामा बिंदी। लग जाता है, हमें फुल स्टॉप लगाना। एक सर्वे कहता है 80% लोग पास्ट में रहते हैं, 15% फ्यूचर में रहते हैं और केवल 5% प्रेजेंट में रहते हैं। 80% पास्ट में रहते हैं, इसका भाव क्या है? फुल स्टॉप नहीं लगा पाते और इसीलिए अपने भूत में भटकते रहते हैं। भूतकाल के साथ ही भूत जुड़ा हुआ है और भूत क्या करता है? भूत आपको खुशी देता है? खुशी देता है या परेशान करता है? भूत परेशान करता है, तंग करता है, है ना, हमें डराता है, हमें भटकाता है, हमें बोझिल करता है। तो भूत को क्या करें? भूतनाथ को अर्पित कर दो। जो भी पास्ट का भूत है उसे भूतनाथ को अर्पित करके जाना है, मधुबन से लेके नहीं जाना है ना। तो क्या करना? फुल स्टॉप। तो बाबा ने क्या दिया हमें? आठवें धाम में बाबा ने क्या कहा? तीन बिंदियों का तिलक। देख लें, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, बाबा ने आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, ये तीन बिंदियां मुझे देते हुए ज्ञात दिलाया कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ के लिए, समान बनने के लिए इन तीन बिंदियों का तिलक लगा कर रखो। नौवां धाम, बाबा के कमरे में पहुंच जाए। नौवां धाम हमारा बाबा का कमरा। बाबा के कमरे में हम पहुंच गए। देखें, बाबा ने नौवीं मुरली में कहा बाबा का अंतिम वरदान, अंतिम सौगात, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। देखें, बाबा के पास पहुंचे, बाबा अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं। 1969 18th January, जैसे दादी बाबा के सामने थी वैसे मैं बाबा के सामने हूं। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और सिर पर हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। अपना राइट हैंड अपने सिर पर रख लें। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव। आत्मसात कर लें बाबा के इस वरदान को, फील करें मैं बाबा के कमरे में और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हुए ये तीनों वरदान दिया और मुझे कह रहे हैं कि बच्चे दृढ़ संकल्प करो कि बाबा के इस तीनों वरदानों को प्रैक्टिकल जीवन में लाओगे। एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं और बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प करें, दृढ़ संकल्प कि बाबा आपने जो हमें वरदान दिया, अंतिम वरदान, अंतिम सौगात, अपना हाथ अपने हृदय पे रख लें और दिल से बाबा से प्रण करेंगे कि बाबा आपके वरदान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव के वरदान को मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाऊंगा। दिल से ये बाबा से प्रॉमिस कर ले। बैठेंगे। जैसे हमने बाबा से संकल्प करके आत्मसात कर लिया इस सुंदर वरदान को, दसवां धाम बाबाज होम। ये बाबाज होम कौन सा स्थान है? आपका घर। किसका घर है? बाबा का घर है। आप रोज बाबा का आह्वान करते हैं अपने घर में, करते हैं ना? तो जहां रोज भगवान आते हैं, जहां रोज भगवान को भोग लगता है, जहां चैतन्य में जो इष्ट देव और इष्ट देवियां रहती हैं, वो स्थान क्या हो गया? धाम हो गया ना। तो दसवां धाम मेरा घर, वो मेरा घर नहीं, बाबा का घर है। तो दसवीं मुरली बाबा ने कही कि बच्चे चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। जो अनुभव की अथॉरिटी है वो माया से कभी धोखा नहीं खाते, इसीलिए अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो क्या करेंगे हम? बाबा के घर अर्थात अपने घर में देखें बाबा का आह्वान करते हैं, फील करो। चलो एक मिनट अपने घर में पहुंच जाएं, अपने लौकिक घर जो मेरा नहीं बाबा का घर है, और मैं प्यार से बाबा का आह्वान कर रहा हूं कि बाबा आप अपने घर में आए, अपने बच्चों से मिलने के लिए आए। ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, ये बच्चे आपके हैं, यहाँ का सब कुछ आपका है, आप अपने इस घर में पधारें। और देखें बाबा पूरी एडवांस पार्टी को लेकर के घर में आ गए हैं। देखें घर में बेडरूम, किचन, सभी स्थानों पे बाबा और हमारे पूर्वज चक्कर लगा रहे हैं और फिर एक स्थान पर बैठकर अनुभव साझा कर रहे हैं। एक एक पूर्वज अपने अनुभव सुना रहे हैं। बाबा ने फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, जैसे पूर्वज अनुभव की अथॉरिटी हैं, वैसे तुम्हें भी चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो रोज बाबा घर में आते हैं, आह्वान करें, और रोज पूर्वजों को लेके आते हैं, और रोज एक पूर्वज अपना अनुभव घर में साझा करते हैं, वाइब्रेशन घर में फैलाते हैं। इसे बहुत गहराई से देख लें। दसोधामों की यात्रा हो गई। चलें अब एक बार रिपीट कर लें बाबा को देखते हुए। पहला धाम डायमंड हॉल। क्या कर रहे हैं? बाबा ने क्या दिया? चार्ट दिया। अच्छे से देख लें, चार्ट बाबा ने दिया। चार्ट में दो पॉइंट थे, एक धर्म एक राज्य। कितना है उसमें बाबा ने कहा अपनी परसेंटेज दो। दूसरा धाम शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ में ज्वालामुखी तपस्या से अपने मैपन की पूंछ को जला दिया। तीसरा धाम अव्यक्त लोक, दादी ने हमें ब्रह्मा बाबा का सुंदर पोर्ट्रेट दिया, क्या लिखा हुआ था, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। चौथा धाम प्रकाश स्तंभ, दादी जी ने गुलदस्ता दिया, उस पर क्या लिखा था, स्मृति स्वरूप बनो। पांचवा धाम ज्ञान रत्न स्तंभ, हमने अपनी फाइल कौन सी, कारण और समस्या की फाइल दादी को दी, दादी से क्या लिया, दो टोली डीपी की टोली, और अपनी डीपी में लगा दिया, वो टोली लगा दी ना अपनी डीपी में, लगा दिया डीपी, दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। छठवां धाम हिस्ट्री हॉल, क्या किया, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय उससे मुक्त होने की विधि, क्या बनाई, टाइम टेबल, राइट। सातवां धाम शांति स्तंभ, बाबा ने क्या दिया, तीन स्वर्ण पत्र, क्या लिखा था, होलिएस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट। आठवां धाम बाबा की कुटिया, बाबा ने क्या दिया, तीन बिंदियों का तिलक। नौवां धाम बाबा का कमरा, बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अंतिम वरदान दिया, कौन सा, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी भाव, और हमने संकल्प किया हम इसे प्रैक्टिकल जीवन में लाके दिखाएंगे। दसवां धाम बाबाज होम, मेरा घर बाबा का घर, क्या किया, बाबा का आह्वान, बाबा पूर्वजों के साथ आए और हर एक पूर्वज अनुभव सुना रहे हैं, और बाबा ने मुझे उनके अनुभव को सुनते हुए क्या इशारा किया, क्या इशारा किया, चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो बाबा को सामने देखते हुए हम दिल से बाबा को शुक्रिया करेंगे पूरे ही अव्यक्त मुरलियों के लिए, होमवर्क के लिए, और बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि बाबा हम नंबर वन गॉडली स्टूडेंट बनकर आपके सभी होमवर्क को अवश्य पूरा करेंगे। होमवर्क पूरा करने में मैं नंबर वन लूंगा, कौन कौन नंबर वन लेगा आप में से, सारे नंबर वन, राइट। एक बार अपने लिए ताली बजा लें, बहुत सुंदर, बाबा भी आपको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। चलें तो ट्रैफिक कंट्रोल के साथ पुनः हम इन दसों धामों की सुंदर यात्रा करके इस होमवर्क को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हम इस होमवर्क को करने में नंबर वन लेंगे।
प्रभु का ध्यान